नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उसने नहीं कहा, जिसे लिखा है मालती जोशी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। उसने नहीं कहा। वह नहाकर निकला ही था कि शोभा ने कहा, जरा बाहर जाकर देखिए तो क्या है, उसने बेजारी से पूछा, पर अपनी उत्सुकता को रोक न सका। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ बरामदे में आ खड़ा हुआ। देखने को वहां कुछ भी तो नहीं था। अपने पीछे चली आई शोभा पर वह बरसने ही वाला था कि उसने कहा, जरा बाहर तो देखिए बाबूजी को। इस बार उसने देखा दरवाजे पर एक ठेला खड़ा है और बाबूजी उसे पैसे दे रहे हैं। इससे पहले कि वह शोभा को अच्छी चुपती सी बात कहता, बाबूजी तीन चार पुड़िया बगल में समेटे गेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे। यह क्या ले आए बाबूजी, उसने आगे बढ़कर फाटक बंद करते हुए पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा सा नमकीन, अपना बोझ प्रमोद के हवाले करते हुए बाबूजी ने कहा। अच्छा, दिखा तो ले लिया, बच्चों वाला घर है, दिन भर बच्चों को मुँह चलाने के लिए कुछ चाहिए ही। और इतना कहकर बाबूजी जैसे कर्तव्य मुक्त होकर अपने कमरे में लौट गए। पर उनके जाते ही ओट में खड़ी शोभा सामने आ गई। लो भाई, संभालो अपने अमानत, प्रमोद ने सामान उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, किंतु वह वैसे ही तनी हुई मुद्रा से दूर खड़ी रही। अरे लो भाई, मुझे तैयार होने दो, अब 9:15 हो रहे हैं। यह है क्या, उसने रूखे स्वर में पूछा। नमकीन है बाबूजी, बच्चों के लिए खरीद कर लाए हैं। आपके बच्चों ने कभी रात चलते ठेले की कोई चीज़ खाई है? ठीक है भाई, पर मैं बाबूजी से तो यह सब नहीं कह सकता ना, उन्हें अपने लाडरे पर प्यार आ गया है, तो बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। उनका मन हुआ तो वे खरीद लाए, अब तुम्हारा मन हो तो घर में रखो, नहीं तो नौकरों में बांट दो, बस बात ख़त्म। नहीं, बात यही ख़त्म नहीं। प्रमोद भीतर जाने को मुड़ा ही था कि शोभा का सख्त स्वर सुनकर बीच ही में रुक गया। क्या? यह कि मैं इसका मतलब खूब समझती हूँ। साफ साफ कहो ना, वक्त बेवक्त कुछ देखती नहीं, बस बहस कर लेकर बैठ जाती हूँ। जरा घड़ी तो देखो। मुझे मालूम है, यह सब मुझे दिखाने के लिए किया गया है। मेरी समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक से बताओ। दो चार दिन से उनकी मंडली को नाश्ता नहीं दे पा रही हूँ ना, इसलिए यह नाटक रचा गया है। लेकिन क्या नाश्ता नहीं दिया गया? तुम्हें मालूम है बाबूजी सूखी चाय कभी नहीं पीते। बाबूजी के लिए किसने मना किया है? पर पूरी बारात को तो मैं रोज खिला नहीं सकती ना, बिस्कुट उस्कुट से काम चल जाता तो भी गनीमत थी। पर आपके पिताजी तो चाहते हैं दिन भर हलवाई की कढ़ाई चढ़ी रहे। पता नहीं किस जमाने में रहते हैं, ना तो उन्हें इस बात की परवाह है कि बाजार आकाश छू रहा है, ना इस बात का ही ख्याल है कि घर में गैस है या नहीं, या नौकर बीमार पड़ा है। मजबूर हैं बेचारे, माँ ने ऐसा शाही आदतें डाली हैं, अब भला इस उम्र में छूटेंगी क्या? पर शोभा को तसल्ली नहीं हुई, खाने की मेज पर भी उसका भुनभुनाना जारी रहा। आखिर तंग आकर प्रमोद बोला, अच्छे भले पड़े थे गांव में, तुम्हें ही शौक चढ़ा था बुलाने का, अब क्यों रोती हो? हम लोगों के होते हुए वहाँ उनका अकेले रहना क्या अच्छा लग रहा था, आखिर संतान किस दिन के लिए होती है, शोभा ने बिरजुगाना लहजे में कहा। जब इतनी समझदार हो तो सहना भी सीखो। तुमने क्या सोचा था कि बाबूजी आएंगे तो मोम के गुड्डे की तरह कमरे में पड़े रहेंगे? मैं क्या पागल हूँ, बल्कि मैंने तो सोचा था कि घर में बड़े बुजुर्ग रहने से एक दबदबा सा रहेगा, बच्चों पर कुछ अच्छे संस्कार होंगे, आपके टूर पर चले जाने के बाद अकेला सा नहीं लगेगा, कभी कभार सिनेमा या क्लब जाते समय बच्चों का निश्चिंत होकर छोड़ा जा सकेगा। तुम्हारी यह सारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, फिर जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो, जरा सब से काम लेना सीखो। कहने को तो प्रमोद कह गया, पर जानता था कि अब मेज पर बैठना खतरे से खाली नहीं, शोभा अगर शुरू हो गई तो दफ्तर के लिए लेट करवा कर ही छोड़ेगी। बार बार घड़ी की ओर देखता बाबा फुर्ती से उठा और वाश बेसिन पर हाथ धोने लगा। बात आधे में ही टूट जाने से शोभा क्षुब्ध हो गई। वह साफ देख रहा था कि वहाँ सौंफ, इलायची, पेन, रुमाल, स्कूटर की चाबियाँ, सारी चीज़ें चुपचाप उसके पास रख दी गई हैं। और वह चुपचाप सिर झुकाए जूते पहनने का नाटक करता रहा। घड़ी की सुई प्रतिपल आगे भाग रही थी और मान मनोबल का जरा भी समय उसके पास नहीं था। यही तो हो जाता है, शोभा जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाती है, पर वही बातें वह कितनी बार सुने और सुन भी ले तो उसका निराकरण क्या है। यह सच है कि बाबूजी के आते ही घर में आम रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 10 साल से वह इस शहर में है, पर गिने चुने लोगों के यहाँ ही उनका आना जाना होता है। मोहल्ले वालों से तो वह बस दुआ सलाम करते हैं, कभी घंटे 2 घंटे किसी के यहाँ गए हों ऐसा याद नहीं। यहाँ कोई उसका बुरा भी नहीं मानता, सभी अपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में डूबे रहते हैं। बाबूजी को यहाँ बुलाते समय प्रमोद इसी बात को लेकर चिंतित था कि उनका समय यहाँ कैसे कटेगा। जब से याद पड़ता है उसने बाबूजी को हमेशा लोगों से घिरा हुआ ही देखा है। जानता है कि अकेलेपन से बढ़कर कोई सजा उनके लिए नहीं, और यहाँ तो दिन भर घर सन्नाटा सा खींचा रहता है। बच्चे सुबह 9 बजे स्कूल निकल जाते हैं और स्कूल के बाद ट्यूशन आदि से निपट कर ही घर लौटते हैं। वह भी 10 बजे का गया 6 बजे तक लौट पाता है। इतनी देर बाबूजी घर में क्या करेंगे, लाइब्रेरी की किताबें भी आखिर कोई कितनी पढ़ेगा। वैसे भी उन्हें पढ़ने का ज़्यादा शौक कभी नहीं रहा, परंतु बाबूजी के सामने यह समस्या कभी उठी ही नहीं। पहली बार सुबह की सैर को गए तो 3-4 पेंशनरों को साथ पकड़ लाए, उन्हें गर्मा गर्म चाय नाश्ता कराया। प्रमोद भी खुश हुआ कि चलो हम उम्रों के बीच अब आसानी से उनका वक्त कट जाएगा। प्रमोद तो अपनी परेशानियों से मुक्त होकर हल्का अनुभव करने लगा, पर शोभा की परेशानियां एकदम बढ़ गई। सुबह का समय वैसे भी घड़ी से होड़ करके बीतता है, अब उन बुजुर्ग वालों के चाय नाश्ते का काम और भी बढ़ गया था। बाबूजी शहर से लौटते ही दीपू को चाय का ऑर्डर भेज देते, तब शोभा को बड़ी कोप्त होती थी। अब वह बच्चों को तैयार करे, रसोई देखे या सुबह से चाय ही बनाती रहे। सितम यह है होता कि भल्ला साहब के पिताजी दूध लेने के लिए घर से चलते और फिर बाबूजी की बैठक में रम जाते, फिर गोपाल को उनके यहाँ दूध पहुँचाने भी जाना पड़ता। दीपू नीतू को तैयार करती शोभा खींच उठती, इन लोगों को तो कोई काम नहीं है तो क्या सभी लोग पेंशन लेकर बैठ जाएं? यह तो होती है सुबह की महफिल। दोपहर को बाबूजी शतरंज लेकर बैठ जाते हैं, 2-4 खेलने वालों को और 2-4 देखने वालों को जुटा ही लेते हैं। 5 बजे तक चाय और शरबत के 2-4 दौर हो जाते हैं। इस समय बाबूजी की इच्छा होती है कि घर का कोई गर्मा गर्म नाश्ता भी परोसा जाए। फिर बाबूजी इशारा करके मेहमानों को खिलाते जाते हैं और बहू की तारीफ करते जाते हैं। इससे शोभा इस प्रशंसा से बड़ी पुलकित होती थी, पर अब उसे कोफ्त होने लगी थी। शाम को मिश्रा जी के बड़े भाई साहब प्रीति को डांस क्लास में छोड़ने के लिए घर से निकलते हैं। प्रीति को अकेले जाते डर भी लगता है और ताऊ जी के साथ जाते शर्म भी आती है। वह यहाँ तो साथ आ जाती है, फिर नारंग साहब की ज्योति के साथ आगे बढ़ लेती है। घर वापस लौटने के बजाय ताऊ जी बाबूजी के पास बैठकर और भतीजी की प्रतीक्षा करते हैं, फिर नई सभ्यता को कोसते रहते हैं, चाय उनके लिए बनती रहती है। अपनी पूरी की पूरी पेंशन बाबूजी प्रमोद के हाथ में पकड़ा देते हैं तो वह संकोच से गड़ जाता है, पर शोभा भुनभुनाती रहती है। 150 रुपये पकड़ा देते हैं तो सोचते हैं कि जग जीत लिया, जरा बाजार जाकर पता तो करें तो गश्त आ जाए। परेशान हो उठा था प्रमोद, पत्नी को कैसे समझाए कि जिंदगी भर यही तो कमाया है बाबूजी ने, जंगल में भी बैठ जाए तो 2-4 लोग आसपास जुट जाते हैं, फिर यहाँ तो इतना बड़ा शहर है। दिन भर बहुत बेचैन रहा प्रमोद, शोभा की परेशानी वह समझ रहा था, पर माँ कैसे तालमेल बिठा लेती थी। माना कि ऐसी सर्वग्रासी महंगाई उन दिनों नहीं थी, पर आमदनी भी तो ज़्यादा नहीं थी। फिर 4 बच्चों के साथ और ऐसा मजबेबाज पति, पर घर में कभी चकचक नहीं मची। कभी परेशान भी होती तो बच्चों के सामने कह सुनकर हल्की हो जाती, बाहर वालों ने हमेशा उन्हें मुस्कुराते ही देखा है। उनका अतिथि सत्कार उस समय भी मिसाल के रूप में गिना जाता था। याद है उसे कई बार सब्जी के लिए उबले आलुओं को मसल कर ही माँ ने कचौड़ी बना दी है, पर बच्चों को सिर्फ कोरी दाल में रोटी तोड़नी पड़ी है। कभी कभी उबलते दूध में चावल डालकर खीर बना दी गई है, दोपहर की चाय ना मिली तो ना सही, कभी महीने के अंत में तो बच्चे अचार से ही काम चला लेते हैं, पर उस समय भी कोई भूला भटका आ निकलता तो माँ झट से चढ़ाई चढ़ाकर बेसन घोल देती है और आंगन में लगे अजवाइन या पोई के पत्तों के पकौड़े उतार लेती है। उनका एक ही सिद्धांत था, अपने घर में हम कैसे भी रहें पर घर आया मेहमान संतुष्ट होकर जाना चाहिए। और घर में आने वालों की संख्या क्या कम थी, नाते रिश्तेदार तो खैर थे ही, उससे ज़्यादा संख्या तो बाबूजी के दोस्तों की थी। कुछ तो इतने बेतकल्लुफ के सीधे रसोई में आ धमकते और बच्चों के साथ ही शुरू हो जाते, पर माँ के माथे पर कभी शिकन नहीं आई। उन दिनों बाबूजी एक खास रविवारीय भोज का आयोजन करते थे, उसके लिए माँ ने चीनी की प्लेटें, एक भगोना और कलछी अलग रख छोड़ी थी। आंगन के छोर पर बने एक चूल्हे पर यह कार्यक्रम चलता था। माँ रविवार को सुबह उठकर वहाँ झाड़ू बुहारू करती, मसाला पीस कर रखती, आटा सान कर रखती, सारा सामान एक बार वहाँ सजा देने के बाद जो मंदिर की राह लेती तो शाम ढले ही घर लौटती। दिन भर उनके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं जाता। पड़ोसने कहती, पति के पापों को अपराचित कर रही है बिन्नू की माँ। माँ हंस कर कहती, कोट का पाप कटी का पुण्य, जब किसी को खाने का मन है और हमें बनाना नहीं आता तो हम यहाँ बैठकर क्या करें, उतनी देर ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं। लेकिन अपने घर में तुम्हें यह सब अच्छा लगता है, इतने सारे होटल तो हैं, बिन्नू के बाबूजी वहीं जाया करें तो क्या हर्ज है। अरे वाह, माँ तमक कर बोली, अपना घर होते हुए होटल में क्यों जाएगा कोई, वहाँ खाने से मन भरता है कभी, और इतने संगी साथी लेकर होटल जाने का बूता है किसी का। सच तो था, बाबूजी के समय सामिस भोजन में 10-12 लोग तो कम से कम आते ही थे, होता यह चंदे से ही था, पर उनमें से कई ऐसे थे जो घर से छिप कर आते थे। वृषभान चाचा तो ऐसे थे जो चंदा भी नहीं दे पाते थे और बिना बुलाई ही आ टपकते थे। तब माँ कहती, मर्द मानुष हैं, खाने पीने के हवस को कहाँ तक दबाएंगे, बेचारा घर में नहीं मिलता तभी तो इधर उधर लाट टपकाता फिरता है। शुरू शुरू में तो माँ बच्चों का खाना बना कर रख जाती थी, पर बाद में चाचा बच्चों को खींच कर अपने पंगत में ले जाने लगे। माँ को पता चला तो हाथ जोड़कर बोले, लाला लड़के तुम्हारे हैं, जैसे चाहे गुण सिखा देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर लड़कियों को बख्श दो, पता नहीं कैसे ससुराल मिले, मर्द मानुष तो अपने शौक बाहर जाकर पूरे कर लेता है, पर यदि इनकी जीभ का स्वाद लग गया तो छटपटाती रहेंगी। उस समय तो सारी बातें इतनी रूटीन में हो गई थी कि कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगती थी, पर आज सोचते हुए आश्चर्य होता है, मुश्किल से 4 किताबें पढ़ी, कट्टर धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी माँ इतनी सूझबूझ, इतना विवेक, इतनी सुघड़ता कहाँ से ले आई थी, कौन सा विश्वविद्यालय था जहाँ से माँ ने यह विद्या सीखी थी। अभावों में मुस्कुराने की, पति के दोषों को खूबसूरती से ढांपने की, बच्चों के भविष्य में दूर से झांक लेने की, मध्यवर्गीय विपन्नता के बावजूद भी सिर उठाकर चलने की, कहां से सीखा था माँ ने यह सब। माँ के प्रति उसका मन नए सिरे से श्रद्धान्त हो गया। सच, ऐसी संगनी को खोकर बाबूजी कितने अकेले पड़ गए होंगे, पता नहीं उसके मन में कैसा ज्वार उमड़ा कि घर लौटते समय उसने स्कूटर के सामने वाली बास्केट तरह तरह के खाद्य पदार्थों की थैलियों से भरी हुई थी। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो कृपा राम हलवाई की दुकान के सामने गाड़ी रोककर उसने 10-12 गर्म कचौड़ियाँ भी तुलवा ली। स्कूटर पार्क कर किसी स्कूली बच्चे किसी आतुरता से सीधा बाबूजी के कमरे में घुस गया। बाबूजी कचौड़ी लीजिए, बिल्कुल कढ़ाई से निकलवा कर लाया हूँ, अपने यहाँ का मशहूर हलवाई, आपके शहर की टक्कर का तो नहीं। पर बाबूजी विस्मित हो उसकी ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, इतनी क्या है बेटे, अंदर भिजवा दो, सब लोग साथ ही ले लेंगे। संकोच से गड़ गया था वह, ठीक तो है बाबूजी, क्या ऐसे ही हाथ में लेकर खा लेंगे। अपनी उमंग में उसे यह भी याद नहीं रहा कि शाम की चाय बाबूजी उसके साथ ही लेते हैं। स्कूटर का सामान निकाल कर गोपाल अंदर ले गया, फिर उसने उसे आवाज़ दी, कचौड़ी का लिफाफा उसे पकड़ाते हुए बाकी सामान खुद ले लिया और अलमारी में एक एक कर सिरे से सजाने लगा। बाबूजी कुछ देर तो शांति से देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह क्या हो रहा है बेटे? जरा शहर तक निकल गया था, बड़ी फेमस दुकान है वहाँ, अग्रवाल नमकीन भंडार, सोचा यहाँ तक आया हूँ तो कुछ लेता चलूँ। यह कुछ है, तुम तो पूरी दुकान ही उठा लाए बेटा। तो क्या हुआ बाबूजी? यह खराब होने वाली चीज़ें थोड़ी ही हैं, तली हुई मूंग की दाल, ये बीकानेरी भुजिया, ये रतलामी सेव और ये तली हुई मूँगफलियाँ, इन्हें आजकल टेस्टी कहते हैं। ठीक है बाबूजी ने उसे रुकते हुए कहा, अब ले आए हो तो ठीक है, पर यहाँ क्यों नुमाइश लगा रहे हो? जाकर बहू को संभलवा दो। इसी प्रश्न से प्रमोद बचना चाहता था, हक लाते हुए बोला, उधर के लिए भी लाया हूँ, गाड़ी में पैकेट्स रखे हैं। इधर के लिए अलग लाए हो क्यों? अक्सर आपके पास लोग बाग आते रहते हैं ना, तो बाबूजी का स्वर उनकी दृष्टि की ही तरह तीखा था। प्रमोद की सिट्टी पिट्टी गुम हुई जा रही थी, फिर भी हिम्मत करके बोला, दरअसल मैंने सोचा कि कभी आपको अंदर से मांगते हुए संकोच लगे, मतलब यह कि यह बेवक्त कोई आ भी जाए तो आपको परेशानी नहीं हो। तो बेटे एक काम और करो। जी। एक बिजली का चूल्हा और एक पतीली भी यहाँ रखवा दो, बेवक्त कोई आए तो मैं चाय भी बना लिया करूँ। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ बेटे, और एक बात तुम भी समझ लो, मेरे पास जो भी लोग आते हैं वे खाते पीते घरों के शरीफ आदमी हैं, एक कप चाय अगर हम उन्हें पिलाते हैं तो उनसे अपने ही घर की इज्जत बढ़ती है, अपना ही बखान होता है, हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते। मैं क्या यह सब समझता नहीं बाबूजी? इसी वातावरण में तो पल कर बड़ा हुआ हूँ, पर होता क्या है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लेडीज़ को परेशानी हो जाती है, इसलिए कह रहा था। हाँ हाँ बेटे, यह बात तूने ठीक कही, ना कहता तो शायद मेरी समझ में भी नहीं आती। बाबूजी ने नाटकीय मुद्रा से कहा, दरअसल बेटे मेरे घर में तो कोई लेडी थी नहीं, एक सीधी साधु घरेलू औरत थी, इसलिए नहीं जानता था कि परेशानी क्या होती है। अच्छा किया बेटे तुमने बतला दिया। इतनी देर से प्रमोद किसी स्कूले बच्चे की तरह भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, लेकिन इस व्यंग से जैसे वह तिल मिला उठा। एक तो वह वैसे ही दिन भर सोच सोच कर परेशान हो गया था, बाबूजी की इस बात ने उसका रहा सहा संभव भी छीन लिया। चीख कर बोला, आप कैसे जानते हैं कि परेशानी क्या होती है? आपने कभी जानने की कोशिश भी की है? हमसे पूछिए कि माँ ने किन हालातों में गृहस्थी की गाड़ी खींची है, आपके शौक पूरे करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, कितने कितने त्यौहार पुरानी साड़ियों में बिता दिए, कितनी सर्दियों एक इकलौती ऊनी स्वेटर में निकाल दी, कितनी राखियों पर उन्होंने मैके जाने से इनकार कर दिया, भाइयों को दरवाजे से लौटा दिया कितनी बार। लेकिन प्रमोद अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, उसने देखा कि बाबूजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, पैर कांपने लगे हैं, एकाएक उनका सारा क्रोध ठंडा पड़ गया है। उन्हें सहारा देकर पांच की कुर्सी पर बिठाते हुए उसने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी कुछ नहीं बोले, अपने हथेलियों में मुंह छिपाए कुछ देर खामोश बैठे रहे। प्रमोद धीरे धीरे उनके तलवे सहलाता रहा, इससे ज़्यादा उसे कुछ सूझा ही नहीं। एक लंबे अंतराल के बाद बाबूजी ने सिर उठाया और डूबती सी आवाज़ में बोले, मैं जानता हूँ बेटे कि मेरी गृहस्थी एक मामूली से कलर की गृहस्थी थी, पर तुम्हारी माँ ने राज रईसों की शिशान दे दी थी, साक्षात लक्ष्मी का रूप थी वह। मुझे मालूम है कि उसके लिए रोज रोज नई साड़ियाँ मैं नहीं जुटा सका, पर यह भी जानता हूँ कि घर आई हर बहन बेटी नई चुनर के साथ ही विदा हुई है, अपनी जिंदगी चाहे उसने एक ऊनी कपड़े में गुजार दी हो, पर तुम्हारे चाचा लोग शादी होने तक उसी के हाथ के स्वेटर पहनते रहे हैं, घर में हम लोग चाहे जैसा खाते पहनते रहे हों, पर आने वाला मेहमान तृप्त होकर ही लौटा है, मुझ जैसी की गृहस्थी चलाना उसी के बस की बात थी, वह ना होती तो पता नहीं क्या होता। बाबूजी ने एक दीर्घ निश्वास लिया और बोले, वह ना होती तो गृहस्थी का इतना फैलाव ही क्यों होता, लोग गृहिणियों का मन देख कर ही देरी पर चढ़ते हैं, नहीं तो क्या चाय होटलों में नहीं बिकती? पर मोर उत्तर में कुछ कहता इससे पहले ही जैसे उन्हें कुछ याद आ गया बोले, अच्छा सच बताना, अभी तो तुम इतना सब कुछ कह गए हो, तो क्या उसने कभी तुमसे यह सब कहा था कि तुम्हें मरने वाले की कसम सच सच बताना? उनके स्वर की आर्द्रता से प्रमोद परेशान होता। क्षणिक आवेश में कही गई उसकी बात इतनी गहरे बैठ जाएगी उसने नहीं सोचा था। संतावना में वह कोई अच्छी सी बात कहना चाह रहा था कि गेट खड़का। उसने उचक कर देखा, मिश्रा जी के बड़े भाई साहब आ रहे थे। उसे लगा जैसे ये प्रीति के ताऊ जी नहीं साक्षात भगवान हो। बाबू जी, ताऊ जी आ रहे हैं, मिश्रा जी के भाई साहब, उसने बाबू जी का ध्यान बटाते हुए कहा। सचमुच इन शब्दों ने जादू का सा काम किया। पल भर में बाबू जी सहज हो गए। दूसरे ही क्षण वह फुर्ती से उठ खड़े हुए। पैरों में चप्पल सरकाते हुए उन्होंने खूंटी पर टंगा अपना कोट भी पहन लिया। ताऊ जी अपने डगमग चाल से जब तक कमरे में पहुंचते, बाबू जी तैयार होकर बाहर निकल गए और बोले, चलिए मिश्रू जी, जरा चौराहे तक हो आए, मेरे पान बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और उन्हें अबाउट टर्न करवा कर सचमुच वे चल पड़े। प्रमोद ठगा सा उन्हें जाते देखता रहा। करीने से सजी हुई देसी पान की डालियाँ उसका मुँह चिढ़ाती रही। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।